всегда так было.
Kasuna gitme. Gitme kasuna. Jivan ke data. Vaaston ke swami. Tujhe tera sab kuch samarpan hai.
Naya ki patwar.
Sab kuch samarpan. Jo mahan atmaye hain, unme samarpan ka bhav hota hai. जो देवकुल की आत्मा है और जिनको भारत के प्रति बहुत प्यार है, द्वापर से भी उनको समर्पण भाव रहा है। तीन चीजों के लिए समर्पण किया है, एक देश के लिए, भगवान के लिए और धर्म के लिए। ये तीन सबसे महान समर्पण है। मराठी में एक गीत है, शूर अमी सरदार अम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश अन धर्मा साथी प्राण के हितला हाथी। तो जो महान आत्मा है वो देश भगवान के लिए समर्पित, द्वापर से उन्होंने समर्पण किया है देश के लिए और समर्पण किया है धर्म के लिए। तो तुझे तेरा सब कुछ समर्पण, महान आत्माओं की मिशन। तो आज क्या कहा पावन बाबा ने? कुछ युक्तियां बताइए। किसकी युक्तियां बताइए? बंधनों से मुक्त होने के लिए। इसका मतलब बंधनों में जकड़े हुए हैं, इसका मतलब कारागार में बंद है, बेड़िया लगी है, सलाखों के पीछे है। इसका मतलब कोई ना कोई बंधन आत्मा को बांधे हुए है जो उसे उड़ने नहीं दे रहा है। ऐसी दशा देख कर वो आया, इसलिए आया छुड़ाने के लिए, और उसने कुछ युक्तियां बताई। कौन से बंधन है?
देह
का बंधन, मन का बंधन, और कौन से बंधन है?
पुराने संस्कार
स्वभाव, आदतें, ये सारे बंधन। फिर कौन से बंधन है? भटकने के बंधन।
भक्ति का बंधन
भक्ति का बंधन कह सकते। और कौन से बंधन?
गुरुओं का।
ये सबसे कड़ा बंधन है, गुरुओं का बंधन। गुरुओं के बंधन में धर्म के जो ठेकेदार यहाँ तक आ गए हैं, जिसके बाद में भी भटकना चालू है, यहाँ तक पहुंच गए हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि और भी ढूंढे कुछ सत्य और कुछ होगा। यहाँ वालों की बात चल रही है। यहाँ आने के बाद भी ढूंढना, भटकना, खोजना, अन्वेषण करना, वो खोज अभी भी चालू है। जैसे कोई शराबी है जिसने बहुत सारी शराब पी ली है, अपने घर में पहुंच गए हैं, घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मुझे कोई अपने घर ले जाओ। एक शराबी है जो इतनी शराब पी ली है कि जब घर लौट कर आया और घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर चिल्ला रहा है कि मुझे कोई अपने घर में ले जाओ, मेरी मदद करो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सारा गांव सामने खड़ा हुआ है, सारा गांव आ गया है और उसको समझा रहा है कि यही तेरा घर है, पर वो मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरा घर है। फिर गाँव के कुछ ऐसे सेवक लोग होते हैं गाँव में जो मदद करते हैं, वो गाड़ी लेके आते हैं, कहते हैं हम तुमको अपने घर में पहुंचाएंगे, तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम सोच रहे हो ये तुम्हारा घर नहीं है, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें घर में पहुंचा देंगे तुम्हारे। उसकी माँ आके कहती है कि बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ और यही तेरा घर है। वो कहता है बूढ़ी तुम कौन हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। वो तो शराब के नशे में है। तो जो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, जो लोग उसे वहां से दूर ले जाना चाहते हैं, वो संकल्प की वहां से दूर ले जाए, वही घर से दूर हो जाना है। जो उसको सोचते हैं, क्योंकि वो घर में ही है, वहां से दूर लेके जाना कहीं पर भी, अर्थात घर से दूर जाना है, यहां से कहीं दूर जाना, जो यहीं बैठे हैं और यही घर है, और यहीं से जाकर कहीं और जाकर तपस्या करने का संकल्प है, वो घर से ही दूर जाना है। यहाँ ही बैठकर सत्य को पाकर सत्य की छाया तले बैठकर और कहीं से सत्य को ढूंढने की कोशिश, ये धर्म का बंधन, ये गुरुओं का बंधन है जो खींचता रहता है आत्मा को। कि लोग टेंपल पर आने वाली माता है, टेंपल पर भी जाती है और जाते जाते मंदिर में भी जाती है, मुरली सुनने के बाद हनुमान के मंदिर में भी जाती है, गणेश के मंदिर में ज्यादा जाती है, कृष्ण के मंदिर में भी जाते हैं, मुरली भी सुनते हैं और भक्ति भी करते हैं, दोनों चीजों का
बैलेंस।
भक्ति जब तक पूरा नहीं होता तब तक नहीं, पर भक्ति इसलिए करते हैं कि कोई अनिष्ट ना हो जाए,
पूरा निश्चय नहीं,
आदत भी है पूरा, कुछ ना उनको भी प्रसन्न करना है, अगर वो नाराज हो जाए तो कुछ हो जाए,
पूरा कहीं गलती से तो नहीं पकड़ा हुआ, वही हो ठीक हो,
अगर विनाश ना हुआ तो फिर वो तो आधार तो चाहिए ना, कुछ इधर का कुछ गड़बड़ हो गया तो उधर भी तो कुछ चाहिए पकड़ने को, पहले तो इधर भी पकड़ के रखा है ताकि सिक्योरिटी आरक्षित। तो गुरुओं का भी बंधन है, धर्म के ठेकेदार है उनका भी बंधन है, तो ये भी एक बंधन है, देह का बंधन, मन का बंधन, पुराने संस्कारों का बंधन, गुरुओं का बंधन, और कौन से बंधन है, लोक लाज मर्यादाएं,
पदार्थों का बंधन,
ये सब मर्यादा, फिर साधनों का बंधन। कभी मुरली भी चली है, इन तीन बंधनों के ऊपर एक मुरली है, मन तन और साधन, एक सेपरेट मुरली है इसके ऊपर। साधनों का बंधन, टीवी मोबाइल इंटरनेट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का बंधन, ट्रांसपोर्ट है तो जाएंगे नहीं तो नहीं, और कौन से बंधन है संजय सर, हो गया
ट्रांसपोर्ट और कहीं भी ले जाता है वो भी होता है।
गवर्नमेंट के भी नियम कानून
का बंधन, आत्मा को जो जकड़े हुए, आत्मा को जो बांधे हुए, आत्मा को जो उड़ने नहीं देते, विकर्मों का बंधन, पाप कर्मों का बंधन, पूर्व जन्म के इस जन्म के किए हुए पाप कर्मों का बंधन, हिसाब किताब जो है ना वो भी एक बंधन है उसको कहा जा सकता है। फिर व्यर्थ का बंधन, व्यर्थ का बंधन नकारात्मक विचारों का भी बंधन है, विकारों का बंधन भी है सबसे बड़ा बंधन, तो विकारों का ही है, विकारों में ही तो जकड़े हुए थे, हो गया ना, तो विकारों का बंधन ये। और
व्याधि व्याधि होता है तो रोग व्याधि,
शरीर का भी बंधन में सब आ जाएगा, शरीर के बंधन में व्याधि आ जाएगी,
सूक्ष्म रूप से जो विकार है
वो सूक्ष्म विचार विकारों का ही बंधन कर, स्थूल विकार कौन से, आदतें, अच्छा व्यसन वो भी एक बंधन है, वो भी एक बंधन है, शराब दारू बीड़ी सिगरेट वो जितने भी आदतें हैं वो सारे भी बंधन है। जब आत्मा इन सभी बंधनों में बंधी हुई है तब वो परवश है, अधीन है, बोझ वाली है, पुरुषार्थ उसके लिए मुश्किल है। व्यर्थ संकल्प पर चिंतन पर दर्शन का बंधन, सब कुछ होगा उसमें, पर चिंतन पर दर्शन परमत, ये सारे जो है उदासी का बंधन, शिक्षक उदास हतोत्साहित विकार तो आगे आलस से उसमें, और अलग से करने की इच्छा है परंतु वो आता ही नहीं है, अच्छा है आदत पड़ गई है हर चीज डिले करने की, वो भी एक बंधन है। तो स्वभाव में आ गया, वैसे तो स्वभाव में सब कुछ आ गया। तो बाबा ने आज क्या, कौन किसको देख रहा है, बाबा क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, नहीं और उसी की लदे बच्चों को देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, हर्षा रहे हैं बाबा देख कर, उसको खुशी हो रही है,
पहले बंधनों
को देख कर नहीं हर्षा रहे, अलौकिक मिलन, जैसे बाप दूर से आए वैसे बच्चे भी दूर से आए, ये मिलन अलौकिक मिलन है, एक ही बार होता है, और इस मिलन की क्या विशेषता है, 10 विशेषता सुनो इस मिलन की,
ये सबसे बड़ा मिलन है,
ये सब महामिलन है, ये महारास है, महामिलन है, ये कुंभ का मेला है, ये मिलन महफिल है, रूहानी मिलन है, अलौकिक मिलन है, दिव्य मिलन है, विचित्र मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, देह का देह से मिलन नहीं है, ये मिलन में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई रंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कुछ नहीं, सब समान है, इसमें फायदा है, उसमें नुकसान है, और क्या है इस मिलन की विशेषता,
अविनाशी मिलन,
अविनाशी मिलन प्राप्ति करने का मिलन है,
और एक गुप्त मिलन है,
ये गुप्त है, अदृश्य है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, ना आत्मा दिखाई दे रही है ना परमात्मा है। अब वो तो आज बोल दिया बाबा ने, वो इसी समय होता है, वो तो दो विशेषता तो सुना दी, तुम भी दूर से आए मैं भी दूर से आया और एक ही टाइम होता है, अब नहीं तो कब नहीं, ये अब के ये दो विशेषता तो भी नहीं, और इतना ही
मिलन का गायन भक्ति मार्ग में चलते आते।
कौन सा?
महाराज
गीते ना, जब अंतर्यामी ने देखा, क्या गीते हैं किसको पता है, जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखिया उनकी ही आश करे, वो निवेदिताए समर्पिताए उन पर ही विश्वास रखे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संग महारास करे। गीत है वो, गीत है। तो जब भगवान ने देखा कि वे अब सब अंतर में वही वास कर रहा है, जब देखा निवेदिताए और समर्पिताए हो गए, अर्पिताए समर्पित कर दिया इन गोपियों ने, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संग महारास करे। तो भगवान ने तब निश्चित किया, ये गीत है महाभारत में आता है ये गीत। और क्या हो रहा है इस मिलन में, आत्मा के जन्म जन्म की प्यास, आत्मा के जन्म जन्म का भटकन, आत्मा का
विकर्म विनाश
तो है वो अलग है, क्या हो रहा है, जन्म जन्म जिसको ढूंढा, जन्म जन्म जिसको खोजा, जिसके लिए तड़प रहे थे, वो यहाँ प्राप्त हो गया, उसको आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा संतुष्ट हो गई, आत्मा की प्यास बुझ गई, आत्मा को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, वो यहाँ हो गया, उसका भटकना ही बंद हो गया, आत्मा को मिल गया, मिल रहा है, मिलते रहेगा, ये अनुभव हो रहा है यहाँ पर आत्मा को। तो ये इस मिलन की विशेषता है कि इस मिलन में आत्मा तृप्त होती है, संतुष्ट होती है, भरपूर होती है, संपन्न बनती है, मालामाल बनती है, उसे कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती है,
लीन हो जाती
है आत्मा, लीन हो जाती है, जैसे वही भक्ति मार्ग में गायन है कि उधर कि वो उसमें समा जाती है, ऐसा सूक्ष्म दिव्य अनुभव होता है। इसी मिलन से आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, अब तक वो कभी नहीं हुआ, वो यहाँ हो रहा है। तो ये सारे मिलन की विशेषताएं हैं। तो बाबा ने क्या कहा, अलौकिक मिलन है, अब नहीं तो कब नहीं, केवल अब हो रहा है, तुम मैं दूर देश से आए हो, तुम भी दूर दूर से आए हो, तो ऐसा ये मिलन है, ये दूसरा पॉइंट। फिर आगे क्या कहा बाबा, धारणा, बाबा आगे क्या कहा, मुझे धारणा नहीं, दूसरी बात और एक बात है वहां पर, जन्म जन्म से क्या करते आए हो, सुनना, जन्म जन्म से सुनते आए हो, अभी क्या करना है राजू भाई, फिर धारणा स्वरूप बनना है, आगे एक जगह बोला स्मृति स्वरूप बनना है, जन्म जन्म से क्या करते हैं, केवल सुनते, जन जन बाबा ने आगे भी बोला, जन्म से तो सुनने की आदत है, इसके वजह से तो ब्रह्मा मुख वंशावली बने। हाँ, सुनना मिलना समाना, समान बनना, समाना नहीं,
समान।
तो एक है सुनना, एक है धारण करना। सुनना एक शारीरिक घटना है और धारण करना ये आध्यात्मिक घटना है। आगे एक जगह बाबा ने कहा है, एक है कहना, एक है निभाना। कहना क्या, एक बाप दूसरा ना कोई, एक है निभाना, वादा को निभाना तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो कहना ये शारीरिक घटना है, निभाना जो है वो ये आध्यात्मिक घटना है। वैसे ही मिलना जो है वो एक शारीरिक घटना है, परंतु समान बनना ये आध्यात्मिक घटना है। तो बाबा कह रहे सुना तो बहुत है, कितना सुना, भक्ति मार्ग में क्या किया अब तक, सुनते ही आ रहे, किस किस को सुना, गुरुओं को सुना, शास्त्रों को सुना, तपस्वियों को सुना, सन्यासियों को सुना, गुरु धर्म अवतारों को सुना, पंडितों को सुना, आचार्यों को सुना, तपस्वियों को सुना, मनस्वियों को सुना, पुजारियों को सुना, ब्राह्मणों को भी सुना, कथाएं सुनी, क्या क्या सुना, कथा सुनी, वेद सुने, शास्त्र सुने, पुराण सुने,
बहुत कुछ सुना, सुनते ही आ रहे,
भागवत गीता,
गीता सुनी, भागवत सुना, रामायण सुना, सुन सुन के क्या हो गया, सुन सुन के
सुन हो
गए सुन वहाँ तुम सुनते ही आए, वो केवल एक शारीरिक घटना थी, पर अभी अभी धारण करना है वो आध्यात्मिक घटना, वो कनरस था केवल, उसमें बड़ा आनंद आता है सुनकर, किसी को कोई अच्छी बातें अगर सुनाए तो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ वहाँ की बातें, वो था सुनना, अभी यहाँ आने की बात क्या है, फिर धारण करना कि अभी भी सुनना, पर अभी भी तो सुन ही रहे ना, अभी भी तो सुन रहे, केवल सुनना नहीं है कोई भी चीज, सुनते सुनते उसको साथ साथ ग्रहण करना है, साथ साथ धारण करना है, केवल मुरली सुनना या क्लासेस सुनना ये लक्ष्य नहीं, अभी उसको धारण करना है,
डायरेक्शन है तो
सुनने पर चलने की बात है, तो ये है सुनना, एक है सुनना केवल, एक है आत्मा तूने पूर्ण होश पूर्ण सुने, क्या सुनाई दे, कौन सुना रहा है, क्या सुन रही हूँ, इस पर संपूर्ण ध्यान। तो बाबा ने कहा जन्म जन्म सुनते आए हो, जन्म जन्मांतर सुनते हैं, जब से जन्म लिया तब से सुनते हैं, जन्म सुने इसके लिए ब्रह्मा मुख वंश अभी बने, अब धारणा स्वरूप बनना है, अब स्मृति स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने और तीन बातें कही, कौन सी, बंधनों से मुक्त होने की विधि कौन कौन सी, त्रिकालदर्शी, हर कर्म करने से पहले क्या करो, संभव है नहीं? हर कर्म करने से पहले सोचो कि इसका आदि मध्य और अंत क्या होगा। अच्छा त्रिकालदर्शी में तो दो कालदर्शी बने, दो कालदर्शी में तो एक कालदर्शी, दो कालदर्शी भी ठीक है, दो कालदर्शी भी ठीक है ना, कर्म क्या कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा उतना भी बने तो ठीक, तो भी तो बाबा ने कहा है त्रिकालदर्शी बनेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्म नहीं होंगे, कुकर्म नहीं होंगे, शुद्ध कर्म होंगे, सुकर्म होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे, त्रिकालदर्शी तीनों कालों का ज्ञान, सोच समझ कर जो करने जा रहे उसका परिणाम क्या होगा ये सोच कर, तीनों ही काल बुद्धि में घटना के संबंधित ज्ञान बनकर, ज्ञानी को आत्मा की निशानी देते, तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है, कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी कब, कर्म करने से पहले की स्टेज है त्रिकालदर्शी, सोच में क्या करने जा रहे, कर्म करते समय कौन सी स्थिति, साक्षी, साक्षी दृष्टा बनकर अगर कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं कर्म का कोई भी बंधन, कर्म बंधनी आत्मा नहीं होगा, कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म संबंध में आएंगे, कर्म बंधन में नहीं आएंगे, न्यारे रहेंगे, और न्यारे रहोगे तो कर्मयोगी की स्थिति रहेगी, कर्मयोगी की स्थिति रहेगी तो तुमको देखकर भी दूसरे कर्मयोगी की स्थिति मिलती रहेगी, कर्मयोगी होंगे तो तुम पूजनीय बनोगे, अर्थात दृष्टांत बनोगे, आदर्श बनोगे, सैंपल बनोगे, उदाहरण बनोगे, उदाहरण बनोगे दूसरों के लिए, एग्जाम्पल बनोगे, सैंपल बनोगे, वो आगे की स्थिति, वो तो परिणाम है, उसको छोड़ दो, वो रिजल्ट है, करना दो चीज सोच समझ के करना, हर कर्म करना, उसको चेक करना, वेरीफाई करना, और कर्म करते समय साक्षी की अवस्था, अभी ये चिंतन का विषय है, साक्षी कैसे रहे, हाँ कर्म के आदि मध्य वही ना, वो घटना, जो घटना कर रहे, जो कर्म है उसके प्रति, कर्म से पहले त्रिकालदर्शी, कर्म करते समय साक्षी, कर्म कर रहे हैं परंतु नहीं कर रहे, कर्म कर रहे हैं परंतु उससे प्रभावित नहीं है, कर्म कर रहे हैं परंतु अनासक्त भाव है, जो योगी अनासक्त भाव से कर्म करता है उसको कर्म के बाद उसका जो परिणाम आता है उससे ज्यादा वो प्रभावित नहीं होता है, अगर वो कर्म अनासक्त और निष्काम और निस्वार्थ भाव, ये सारे भाव उसमें अगर है, अगर ये नहीं है, आसक्ति से कोई कर्म किया जाता है तो फिर उसका पॉजिटिव निगेटिव उसको असर करेगा, सेवा की भाव, वो जो भी हमारे जो श्रेष्ठ भावना है उन भावना से, अगर ये छोड़ कर भी पूरी आसक्ति से कोई कर्म करता है बहुत आसक्ति से, तो उसको उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा। अगर वो अनासक्त रहता है तो एक्चुअली वो अकर्म ही है, न्यूट्रल कर्म है वो, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दिखाया एक व्यक्ति अंधा है, जन्मांध है, तो उसको लेके गए उसके पूर्व जन्म में, छठवे जन्म में लेके गए उसको, हिप्नोटिक रिग्रेशन कहते हैं उसे टेक्निक। उसमें देखा गया कि वो एक जल्लाद था, जल्लाद जो कि आंखें फोड़ता था। राजा कहता था इसकी आंखें फोड़ दो, तो वो फोड़ता था। अगर देखा जाए तो ये कर्म कोई पाप कर्म नहीं है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी, परंतु वो करते समय उसे बहुत मजा आता था, बहुत वो एंजॉय करता था उसको, और दूसरे को उसको अंदर से एक जैसे कि उसको बड़ा सताने का जो आनंद होता है ना, वो मिलता था उसको, वो पाप कर्म था। दूसरों को सताने से प्राप्त होने के बाद जो आनंद होता है, वो आनंद आत्मा को अगर हो रहा है तो वो विकर्म है। बाकी अगर वो केवल उसने बताया और किया, उसमें इतना नहीं है।
इसलिए यहाँ भी बाबा ने बोला ना, अगर बड़े आपको गलत कह रहे हैं, आपको लगता है गलत और आप करो उसको,
लेकिन तो जिम्मेवार
बाप
तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। तो साक्षी अर्थात ऐसी स्थिति हो कर्म में कि वहां लिप्त ना हो, बंधन ना बने, अनासक्त वृत्ति। फिर निमित्त भाव वो सब तो है उसमें, निमित्त भाव रहे, निस्वार्थ भाव रहे, निष्काम भाव रहे, इंस्ट्रूमेंट है वो करा रहा है, वो सारा वो ठीक है। मेन है हमारी आसक्ति ना हो उसमें, आंतरिक अनासक्त वृत्ति हो कि ये है आज हम कर रहे हैं, कई कई कल कोई और करेगा यही सेवा। आज हमको चांस मिला है, हमारा भाग्य है कि हम कर रहे हैं, कल ये किसी और को भी मिल सकता है। तो इसके लिए हमारी उस कर्म में भी आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति है तो बंधन बन जाएगा, बांध देगा। तो कर्म करते समय अनासक्त, कर्म करते समय साक्षी, साक्षी अर्थात और क्या, डिटैच ऑब्जर्वर, दृष्टा, नहीं दृष्टांत तो उसका रिजल्ट है, दृष्टा साक्षी, साक्षी अर्थात डिटैच ऑब्जर्वर, देखते रहना, दर्शन दर्शक तमाशवीन, देखते रहना जो भी चल रहा है उसको देखते रहना, बिना उसमें इंटरफियर किए। अविरोध की अवस्था है, अकंप की अवस्था है, अकंप अर्थात कोई भी प्रकंपन हमको प्रभावित ना करे, अकंप की अवस्था है, अविरोध नॉन रेजिस्टेंस, निकलेगा पर हम अप्रभावित रहे, कोई भी चीज का हम विरोध ना करें। आंतरिक, आंतरिक एक स्थिति जिसको कहते हैं निष्क्रियता, निष्क्रियता मतलब कुछ काम ना करना या आलस्यपन नहीं है, आत्मा निष्क्रिय होना मतलब शांत हो जाना, आत्मा पर प्रभाव होना बंद हो गया है, बाहर निर्लेप अवस्था है आत्मा की, अकंप अवस्था है, कोई भी चीज उसको टच नहीं कर रही है, अस्पर्श की अवस्था है वो, हाँ अस्पर्श, कोई भी चीज उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, कर रही है कर्म परंतु अस्पर्श है, कर रही है कर्म परंतु कोई विरोध नहीं है, कोई भी चीज, जैसे हम योग में बैठे हैं उधर आवाज हो रही है, हमारे मन में वो संकल्प है कि आवाज क्यों हो रहा है, सॉफ्ट म्यूजिक जब बजता है तब हमारे मन में कोई संकल्प नहीं है कि इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, और यदि किसी का मोबाइल बजता है तो वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस है कि इसका मोबाइल क्यों बजा। वो आवाज अभी हम कमरे में बैठे हैं योग के, और बाहर बहुत जोर जोर से कोई बात कर रहा है, उनका कोई, उनको हमारे योग से कोई प्रयोजन नहीं है। संसार में आवाजें हैं, हमारे मनोदशा ऐसी हो कि उसमें किसी भी चीज का विरोध ना हो, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना, जो हो रहा है उससे राजी, स्वीकार राजी और अविरोध, किसी का भी विरोध नहीं, जो हो रहा है होने दो, हम अपनी जो स्थिति है उसको शक्तिशाली रखेंगे, क्योंकि हम अगर डिस्टर्ब होते भी है तो वो जैसे किसी का मोबाइल बज रहा है तो वो हमको डिस्टर्ब करता है, क्यों
स्वीकार नहीं किया,
उसको स्वीकार नहीं किया है आपने, आपके मन में विरोध है उसके लिए,
अपना मोबाइल बज रहा है।
अगर वो जैसे शिवानी बहन कहती है ना, आप विरोध क्यों करते, उसने कितनी मुश्किल से कितने सारे रिंगटोन थे उसमें से वो एक रिंगटोन सिलेक्ट किया, उसको कितना प्रिय है वो, कितना उसने मुश्किल से वो रिंगटोन सिलेक्ट किया और आप विरोध कर रहे हो उसका अपने मन में। हाँ मतलब उसने इसलिए तो सिलेक्ट किया कि सबको सुनाई दे, खुद के लिए नहीं केवल सबके लिए,
सबको पसंद है।
हाँ कोई कोई बाबा का आवाज लगा देते ना रिंगटोन, योग चल रहा है जोर से बाबा का आवाज, क्या कौन सा है, आ जाओ मदद करो। अभी कई लोग होते रही कि यहाँ की बज रहे, और उसने तो बड़ी मुश्किल से चुना है, उसकी भी स्थिति को जरा देखो
पूरा
क्यों नहीं है।
हाँ वो भी है,
तो ये जो आवाज है ना, हमने इसको स्वीकार नहीं किया। ट्रक जा रहा है, हम योग कर रहे हैं, हमने उसको स्वीकार कर लिया। पंछी है, चहचहाट, हम उसको, पर किसी के मोबाइल को हम स्वीकार नहीं किया। अविरोध की अवस्था ही साक्षी की अवस्था है, अकंप की अवस्था ही साक्षी की अवस्था है। मैं सब कुछ, सबसे मैं राजी हूँ, सबको मैं स्वीकार करता हूँ, किसी से विरोध नहीं है, किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। यह है साक्षी स्थिति। एक बार ऐसे ही हुआ, मेडिटेशन हॉल में एक कोई नई बहन आके बैठ गई, कम से कम 4 से 5 बार उसका मोबाइल बजा, वो भी जोर से हर बार, और सब शांत बैठे थे। अभी जैसे ही योग खत्म हुआ, जैसे 10-12 लोग तो टूट पड़े उसके ऊपर जैसे इंतजार में थे कि कब योग पूरा हो और उसको समझाए कि मोबाइल बंद क्यों नहीं किया। बज रहा है जोर से, फिर बंद कर रही है, फिर योग, फिर और बज रहा है, फिर और बंद कर रही है। तो कितने लोग जैसे कि टूट पड़े समझाने के लिए कि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने मुख से कहा, बाकियों ने मन से कहा, एक ही है दोनों। तो साक्षी स्थिति, साक्षी की साधना, साक्षी का अभ्यास करना है, अपने आप को भी साक्षी होकर देखना है, ऊपर से देखना है सब कुछ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ये ऐसा है, ये वैसा, ये सब चल रहा है, यहाँ पर खेल चल रहा है, इसमें इंटरफियर नहीं करो। ये ठीक नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा, ये लेट क्यों आता है ड्यूटी पर, ये काम ठीक से करता क्यों नहीं है, कोई विरोध नहीं। अविरोध, नॉन रेजिस्टेंस, साक्षी ऊंची अवस्था है ये। बहुत साधना है, वो भी एक साधना है, परंतु कोई भी आवाज, प्रकृति की आवाज है, व्यक्तियों की आवाज है, हलचल हमारी स्थिति को नीचे ना ला, ये है साक्षी स्थिति। तो बाबा ने कहा कर्म करते हुए साक्षी और कर्म से पहले त्रिकालदर्शी, अगर ये दोनों स्थिति है तो दृष्टांत बन जाएंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे, उदाहरण उदाहरण बन जाएंगे विश्व के लिए। ये 3 स्थितियां पूजनीय बन जाएंगे भविष्य के लिए, और अभी न्यारे रहेंगे, अभी प्यारे रहेंगे, कोई विकर्म नहीं। अच्छा, वो बंधन में नहीं बंधेंगे, अगर ये विकर्म नहीं होगा, पाप नहीं होगा, व्यर्थ कर्म नहीं होगा, तो ये। और क्या कहा फिर बाबा ने, सीधा बंधनों के ऊपर आ गए कि कर्मयोगी, ये कर्मयोगी है तो उनको देखकर सब कर्मयोगी बनते हैं। वो दृष्टांत की बात है, वो रिजल्ट है एक्चुअली, वो करना नहीं है हमको, दैट इज विल कम ऑन इट्स ओन, वो अपने आप आएगा। जो करना है वो ये करना है, सोच समझ के, और डिटैच रहना है कर्म से। कर्म हो गया कि उससे अलग, फिर उसका कोई चिंतन नहीं, उसका बहुत ज्यादा वो चिंतन तभी नहीं होगा जब वो निस्वार्थ होगा, अनासक्त भाव से किया होगा। अगर आसक्ति से किया होगा तो वो कर्म होने के बाद में भी उसका चिंतन चालू रहेगा। अगर वो श्रीमद अनुसार नहीं होगा, किसी से झगड़ा ही कर लिया, तो योग में भी वो झगड़ा ही याद आते रहेगा। किसी से मन मुटाव, विरोध किया, किसी की कंप्लेंट कर दी, तो वही याद आते रहेगा बाद में, वो बंधन बन गया है, कर्म ही बंधन बन चुका है, वो मन के, ये जैसे कि मन का बंधन है। फिर बाबा ने सीधा बंधनों पर आ गए। पहला है देह का बंधन। देह के बंधन में क्या कहा, पहला पार्टी बाबा ने कहा कच्चा है, देही बाप के साथ संबंध नहीं जोड़ा, और आत्मा की स्मृति और बाप की स्मृति नहीं। तो बाबा से सर्व अगर संबंध है तो सर्व बंधन समाप्त। यहाँ 2 उदाहरण दिए बाबा ने। सबसे पहला उदाहरण साइंस का, कि जैसे 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाओ, हो जाओ, तो देह के बंधन 1 सेकंड में समाप्त हो जाए। बहुत बड़ा वाक्य कह दिया है बाबा ने। हाँ, जैसे साइंस के साधनों में 1 सेकंड में परिवर्तन कर देते हैं, वैसे साइलेंस की शक्ति से 1 सेकंड में देह के बंधन को समाप्त करो, भस्म करो। एक स्विच ऑन किया और भस्म, देखा ना वर्ड बाबा ने, स्विच ऑन और भस्म, जैसे वो वैसे ये। और दूसरा उदाहरण दिया, जैसे कोई विद्यार्थी कमजोर है, एक ही क्लास में पढ़ रहा है, कितने साल तक, अभी उसको क्या कहेंगे, अभी ये ईश्वरीय पढ़ाई क्या लास्ट टाइम है, कब 79 में जन्म भी नहीं हुआ, ये ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम है, तब 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 ये कहा है बाबा ने, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे, देह के बंधन की चौपड़ी कच्चा खाएंगे कैसे, वैसे ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे, हमारे पास एक स्टूडेंट था हमारा 10 साल लगे उसको MBBS करने के लिए, हाँ कर लिया, अभी लीडिंग प्रैक्टिशनर है अपने गांव में उसको क्या कहेंगे, डल बुद्धि।
मैथमेटिक्स का एक अथर है, 18 साल वो उस टाइम प्रोफेसर का परीक्षा था एग्जाम, मैंने
पास नहीं
हुआ, 18 साल में पास किया उनके बच्चों के साथ
अच्छा साथ साथ वो भी भाग्य है,
उनको मैथमेटिक्स का आंसर आ जाता है मुंह मुंह में, बोले ऐसे क्या करना है, आंसर लिख देता था लास्ट में, उनको समझाया तुम तो इतना होशियार है क्यों फेल करते, मैं ये नहीं लिख, मैं ये नहीं करता हूँ, खाली आंसर ही
लिख देता हूँ डायरेक्ट, अति बुद्धिमान लोगों को थोड़ा कम बुद्धिमान चाहिए यूनिवर्सिटी वालों को, तो बाबा ने कहा जो कमजोर है उनको कई साल लग जाते हैं, तो यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई का ये अंतिम समय चालू है, अभी तक पहला ही पार्ट पक्का कच्चा है, कौन सा पहला पार्ट, आत्मा और परमात्मा को याद करने के बाद, यही तो सबसे पहला और आखिर भी यही है वास्तव में, तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे कहा बाबा ने क्या कहेंगे इसको, तो ये था तन के बंधन से मुक्त होने की विधि, क्या बताई, बाप से सर्व संबंध, अगर नहीं जोड़ा है तो बंधन है, तो सबसे पहली विधि है साक्षी त्रिकालदर्शी, दूसरा है साक्षी दृष्टा, तीसरा है सर्व संबंध एक बाप से, चौथी विधि मन के बंधन से मुक्त कैसे होंगे,
मन
मनोभाव, इसका अनुभव है, एक के एक बाप दूसरा ना कोई, एक है वायदा एक है कहना एक है निभाना, तो वही कहना ये एक शारीरिक घटना है और निभाना ये एक आध्यात्मिक घटना है, जैसे कि जो पहले कहा बनना और सुनना, सुनना शारीरिक घटना और बनना स्वरूप बनना ये आध्यात्मिक घटना है, निभाना अर्थात पाना, एक बाप दूसरा ना कोई, एक में बुद्धि रहे उसके अलावा बुद्धि कहीं ना रहे, और एक चीज रह गई स्वधर्म की और परधर्म, स्वधर्म में टिकना सहज है या परधर्म में टिकना सहज है, किस में टिकना, बाबा ने कहा देखो कैसी बात है, हम परधर्म में टिके हुए हैं और अपने स्वधर्म में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कितनी उल्टी बात है ये वंडर है, स्वधर्म में टिकना सहज होना चाहिए, परधर्म में जाना मुश्किल बात होनी चाहिए, हम टिके हैं परधर्म में और वहां से हमारी जो क्या कहते हैं जद्दोजहद सारी जो प्रयत्न है प्रयास है चेष्टाएं है वो अपने स्वधर्म में टिकने के लिए, कितनी विडंबना है, इसके लिए वो मुश्किल हो रहा है, एक्चुअली स्वधर्म में स्वधर्म से बाहर जाना मुश्किल है, तो ये बाहर से अंदर अपने स्वरूप में आना मुश्किल हो रहा है, स्वधर्म अर्थात हाँ, तो स्वधर्म अर्थात आत्मिक स्वरूप, परधर्म अर्थात देह का स्वरूप देहभान, स्वधर्म और परधर्म इसकी भी बात बाबा ने कही, फिर मन के बंधन को मुक्त होने की विधि है मन मना भाव, तो ये वायदा पक्का है एक बाप दूसरा ना कोई, फिर आगे बाबा ने वापस उन तीनों बातों पर आ गए कि उस स्थिति में स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी साक्षी और फिर और बाबा ने सुनने की बात वापस कही कि अभी सुना तो बहुत है, अभी स्मृति स्वरूप बनना है, स्नेह का सबूत देना है अर्थात समान बनना, बाप को वो स्टेज कौन सी स्टेज प्रिय है, जो स्टेज बाप को प्रिय है वही बनना है, वही स्टेज बाबा को प्रिय है, तो उस स्थिति में स्थित रहना है, और क्या कहा फिर, और इसको पाने के लिए और दो बातों को धारण करो, नम्रता को और मधुरता को, और चार चीजों को छोड़ो, कौन से संस्कारों को छोड़ना है, संस्कारों का संस्कार करो, कौन कौन से, मन के भटकने के संस्कार, यहाँ आने के बाद में पाने के बाद में भी मन भटक रहा है, वो संस्कार को समाप्त करो। एक दूसरा भिखारी बनकर मांगने के संस्कार, क्या क्या मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, शक्ति दे दो, शांति दे दो, प्राप्त हुए खजाने को व्यर्थ गवाने के, जो खजाने मिले हुए, समय का खजाना मिला है उसको वेस्ट करना, ये हो गया संकल्प वेस्ट कर रहे, वो सब कुछ आ गया, सारे खजाने हैं।
महिमा के साथ कीर्तन भी करते हैं।
और कौन से, ये जितने हमारे खजाने हैं, संकल्प को वेस्ट करना, तन, कौन से खजाने हैं, पवित्रता है, पवित्रता एक खजाना है, उसको खंडित करना, वो भी खजानों को वेस्ट करना है, समय को वेस्ट करना, पवित्रता समय खजानों को व्यर्थ गवाना है, और संकल्प को वेस्ट करना, संकल्प यहाँ वहां लगाना, इधर उधर की बातों में एंगेज हो जाना, ये भी खजानों को, ज्ञान गुण शक्ति है, ज्ञान का खजाना सफल करना है, गुणों को सफल करना है, ज्ञान गुण शक्तियों को सफल करना है, अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं गवाना है, प्रिजर्वेशन ऑफ पावर्स। तो ये सारी, ये जो जितनी ये सारे संस्कार है, असंतुष्ट रहना, संतुष्टता खजाना है, व्यर्थ बोल, बोल खजाना है, वो व्यर्थ में जा रहे, ये खजाने को गवाना, खुश है दुखी हो रहे हैं, ये भी एक खजाना को व्यर्थ कर रहे, बद्दुआ ले रहे, कर्म ही ऐसे कर रहे हैं कि लोग बद्दुआ ही देते हैं, उससे दुख दे रहे हैं किसी को, असंतुष्ट कर रहे हैं, व्यंगबान व्यवहार ऐसा कर रहे हैं कि जिससे घायल हो रहे तीन चार लोग दिन भर, तो वो भी एक खजानों को व्यर्थ करवाना, ये तीसरा खजाना व्यर्थ, तीसरी चीज। चौथी भगवान की क्या करना, केवल महिमा या कीर्तन करना, तो यहाँ सूक्ष्म रीति से है वो, कि ये सारे खजानों को संस्कार करो, ये सारे संस्कारों का संस्कार करो भगवान ने, तो ये चीजों को छोड़ना है, दो चीजों को धारण करना है, और एक विधि बताइए बंधनों से मुक्त होने की, वो कौन सी है। ये तो हो गया, पहला हुआ त्रिकालदर्शी, दूसरा हुआ साक्षी, तीसरा हुआ सर्व संबंध बाप से, चौथा हुआ मन मनाभाव, पांचवा हुआ मधुरता धारण करना और नम्रता धारण करना, छठवा हुआ ये सारों चीजों, इन संस्कारों को छोड़ना, और सातवा, हाँ ये भी एक पॉइंट है, अपने संपन्न स्वरूप को सामने रखो तो माया सामना नहीं कर सकेगी, इसको धारण करने, इसको करने के लिए फिर वो दो बातें, फिर बात समान, ये भी है कि और एक बात है, नहीं वो तो पार्टियों से मुलाकात है, पार्टियों से मुलाकात, अभी मुरली चालू है, नहीं वो पार्टियों से मुलाकात है। बाबा ने कहा आपको अधिकार कौन सा प्राप्त हुआ है, मास्टर सर्वशक्तिवान का अधिकार जब प्राप्त है तो तन और मन का बंधन कहाँ, तो ये भी तो अधिकार है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इस अधिकार में स्थित रहना, तो तन और मन का बंधन कहाँ, हाँ ब्राह्मण जीवन का अधिकार प्राप्त है तुमको, तो इस अधिकार के सामने वो तन के बंधन कहाँ और मन के बंधन कहाँ,
अधिकार कागजों तक ही रह जाता है।
ये तो मुरली में जो कुछ है वो हमने हजारों बार सुना हुआ है, खाली चीज है वही कहना, सुनना और धारण करना, केवल शारीरिक घटनाएं हो रही है सुनने की, आध्यात्मिक घटना घटित नहीं हो रही है, जो कि है धारण, जो है स्वरूप बनना, जो है स्मृति स्वरूप बनना या फिर धारणा स्वरूप बनना, वो केवल सुनने से नहीं होगा, या केवल उसको याद करने से नहीं होगा, या केवल रिपीट करने से भी नहीं होगा, या उसके ऊपर केवल चर्चा करने से नहीं होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन तक जाना चाहिए, ये सारा हो रहा है चेतन मन के स्तर पर, वो जाना चाहिए आध्यात्मिक अवचेतन मन के तल पर, वो अंदर है, वो तहखाना है, वो अंदर है, बीच में एक बैरियर है, वो उसको जाने नहीं देता है उधर, वो बैरियर जो है ना उसको प्री कॉन्शियस कहते हैं इंग्लिश में, वो ऐसा दो समय खुलता है वो केवल, सुबह अमृत वेला, सुबह सुबह उठते ही और रात को सोते समय, तो जो भी सजेशन, ऑटो सजेशन जो दिए जाते हैं स्वयं को, ये दो टाइम है देने के, कॉन्शियस माइंड इधर, चेतन मन या अवचेतन मन, सारा मार्ग इधर है और ये बीच में है, ये जब तक इधर नहीं जाएगा तब तक वो स्वरूप नहीं बनेगा, ये यहाँ केवल चर्चा डिस्कशन सुनना सुनाना ये सब इधर, ये इस धरातल पर हो रहा है, रिपीट करना, चर्चा करना, उसका विस्तार करना, लिखना, किताबें बनाना, किताबें छपवाना या पढ़ना, वो सब इधर ही है, इधर ही हो रहा है, ये ये यहाँ करना में करने वो तो स्टेप है ही, जब यहाँ है तभी तो अंदर जाएगा, ये नहीं है तो फिर तो कुछ है ही नहीं फिर कहीं पर। वो अंतर अंतर अंतस अंतस शब्द है हिंदी में, अंतर डायरेक्ट जा नहीं सकता है। अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड, मन के दो विभाग है, चेतन और अंतर, बाह्य मन अंतर मन। अंतर मन खुलता है, अंत मन सक्रिय सेंसिटिव तब होता है उठते ही, जो पहला संकल्प उठते ही अगर उठे और पहला ही घड़ी देखा ओह लेट हो गया तो वो दुखी हो गए, पहला ही संकल्प कि आज तो लेट हो गए,
घड़ी लगाने की नहीं
होता पहला ही संकल्प, अरे ये या हम जिस संकल्प से सो रहे वही संकल्प से उठते हैं, कोई गलती हो गई पहला ही संकल्प, अरे कल तो गलती हो गई गया, क्योंकि पहला ही संकल्प कौन सा भेजा आपने अवचेतन मन में, क्योंकि वहां प्री कॉन्शियस का ये जो बैरियर है बड़ा हल्का फुल्का रहता है उस समय, तो आप जो चाहे वो भेज सकते हो। पहला ही संकल्प में महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, विश्व की ब्राह्मण चोटी हो, विशेष आत्मा हो, तो तुरंत वो अंदर जाएगा, उसका प्रभाव सारा दिन भर भी चल सकता है, इतनी गहराई से सूक्ष्मता से धीरे धीरे अंतर उसको भेजना है सारे महान संकल्प को, तो वो धारणा स्वरूप होगा, नहीं तो केवल सुनना सुना ना ऊपर ही है,
ऊपर ही सोच सकते पता नहीं गहरे खुल रहा है नहीं खुल रहा है,
नहीं वो खुलेगा वो अंदर चला जाएगा, एकदम अनुभव होगा अतीन्द्रिय सुख का, एकदम तुरंत अनुभव, और सोते समय भी महान संकल्पों के, इसके लिए बाबा कहते हैं आधा घंटा योग करो सो, कुछ पढ़ो फिर सो, क्यों, क्योंकि किस स्थिति में हम सो रहे हैं, क्योंकि वो जो समय होता है ना जब हम निद्रा और जागने के बीच में डोल रहे होते हैं वो जो अवस्था है वो सबसे सेंसिटिव अवस्था है, जब सोए भी नहीं है और जागे भी नहीं है सुषुप्ति, वो जो अवस्था है उसमें सबसे ज्यादा ग्रहणशीलता होती है, वो अवस्था उस अवस्था में कोई लेक्चर सुनते 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 अगर नींद आ गई ना तो वो शायद वो अंदर घुस जाएगा, एकदम अंदर समा जाएगा कहीं, तो हमको शायद पता भी ना चले पर वो अंदर चला जाएगा। तो ये जो चर्चा चालू है इसमें से एक घंटे में से कोई एक ही पॉइंट ऐसा निकलेगा कि जो अंदर घुस जाएगा, वो कब घुसा कैसे घुसा और कहाँ जाके बैठ गया पता नहीं चलेगा, पर वो ही परिस्थिति के समय शक्ति बनकर निकल के बाहर आएगा क्योंकि वो अंदर समा गया, बाकी तो उड़ गया सारा, कौन सी मुरली काहे की मुरली, कौन सी तारीख थी और क्या थी कुछ पता नहीं चलता। तो बाबा ने ये सारी विधियां बताई है आज, किस लिए, बंधनों से मुक्त होने की विधि है ये सर, हर कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में करना, कर्म करते समय साक्षी रहना, सर्व संबंध बाप से जोड़ना, नम्रता धारण करना, मधुरता धारण करना, और जो भक्ति के जो संस्कार है मांगना नहीं किसी से, बाप से भी नहीं मांगना, मन का भटकाना भटकना बंद करना, कीर्तन महिमा केवल नहीं करते रहना है बाबा की, और मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहना, और जो संजय भाई ने कहा अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है आज की बुक, संपन्न स्वरूप को देखना, उसको देखते रहना। किसी भी अनुभव के लिए दो चीजें आवश्यक होती है, एक विजुअलाइजेशन, दूसरा स्वीकार करना। विजुअलाइज करना मतलब मन की आंख से देखना, कल्पना करना कि ये जो है ये मैं हूं, और फिर उसको स्वीकार करना, ये देखना पहला और फिर स्वीकार करना, सेकंड इज एक्सेप्टेंस कि ये मैं हूं, तो ये जो इमेज है ये सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाएगी, ये मैं हूं।
विजन बना,
विजन जिसको कहते हैं ना, बाबा ने भी कहा है विजन बनाना, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, मन की आंख से देखना, ये सारे शब्द है उसके लिए, उसको देखना और स्वीकार कराना कि ये मैं हूं, तो बंधनों से मुक्त होना। ये सारी विधि है बाबा कहते हैं बंधनों से मुक्त होने की। पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर एक, बोलो। पद्मा पदम पति, हर कदम में पदम जमा करना, तो पद्मा पदम पति है। और तुम्हारे सामने संसार की आत्माओं की क्या कहा, जो भी माला माल आत्मा है, साहूकार आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है, नामी ग्रामी आत्मा है, वो सब क्या है, नामचीन आत्मा है, वो सब क्या है तुम्हारे सामने, भिखारी है। क्यों भिखारी है, क्योंकि उनके पास सुख नहीं है, उनके एक सेकंड के सुख के भिखारी है। अभी तो वो कहते हैं कि हमारे पास सुनने का समय नहीं, सोचने की फुर्सत नहीं, पर एक समय आएगा एक सेकंड के सुख के लिए तुम्हारे सामने लाइन लगाएंगे, क्यू लगाएंगे, और तुम वहां पर खड़े होंगे महादानी बनकर, वो तुम्हारी स्टेज होनी चाहिए महादानी की। तो ऐसा नशा रहता है, बाबा ने पूछा, तुम्हारे सामने तुम तो मालामाल हो, तुम्हारे सामने को कुछ भी नहीं है आज तो, जो भी संसार के मालामाल, अंबानी, टाटा, बिरला, ब्रिगेट, मित्तल, सिंह, ये जो भी है सारे टेन टॉप टॉप, हाँ वो सारे मिस्त्री, ये जो टॉप टेन है ना इंडिया के, वर्ल्ड के अलग, इंडिया के अलग, ये तुम्हारे सामने है कुछ भी नहीं है, तुम मालामाल हो। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, कौन सा ओम मंडली के लिए क्या कहा, पहले क्या कहते थे गई की गई, और अब क्या कहते हैं, तब बाबा क्या कहते थे, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड,
मालामाल
है, मालामाल चाहे कुछ भी हो जाए, बाप के बच्चे भूख नहीं भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि अमर भाव का वरदान है, अमर भाव अर्थात
सदा निरंतर खुश,
सदा खुश, सदा निरंतर खुश रह के बाप के साथ समान बनकर समानता की राह करने वाले, यह है अमर भाव का वरदान, सदा खुश बाप के साथ राह करने वाले, जो समान नहीं है वो राह नहीं कर सकते, अभी समान है, अभी साथ है तो वहां पर भी राह करेगी। तो ये था पद्मा पदम, तो ये भी एक सोमान है कि मैं पद्मा पदम पति हूँ, सर्व खजानों से संपन्न हूँ, हर कदम में पदम है, ये आध्यात्मिक घटना है, हर कदम पे पदम जमा करना, ये शारीरिक घटना नहीं हो रही है, ये सूक्ष्म है, पैर कदम, और पदम मतलब थाउजेंड लाख
अरब खरब,
अरब खरब बहुत आगे, पदम बहुत ऊंची है,
इसका कोई संख्या मिला
नहीं, ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद और क्या कहा बाबा ने, पार्टियों से मुलाकात एक नंबर में, और क्या कहा, और एक पैराग्राफ है वहां पर, झंडा तुम शिव शक्ति हो, तुम्हारा झंडा सबसे ऊंचा रहना चाहिए, इतना ऊंचा कि सारे विश्व की नजर उसमें जाए, फूल झंडे की बात नहीं चल रही है, कोई झंडा तो है नहीं जो सबसे ऊंचा जाए, जैसे उदाहरण दिया है कौन सा, अट्रैक्शन वाली वस्तु की तरफ ऑटोमेटिकली सबका ध्यान जाता है, वैसा ही सबका ध्यान यहाँ जाए, इतनी हो ऊंचा हो। फिर भाग्य के लिए भी कहा ना, भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे,
देखते हो।
और एक बात है, और एक पॉइंट है वहाँ पे, सब उसके बाद में आएंगे। हाँ वो ये हो गया फर्स्ट करेगा, फर्स्ट पार्टी, दूसरा नंबर पार्टी, दूसरी पार्टी था कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे। कमल रहता है कहाँ, कीचड़, वो हिमालय में नहीं जाता है गुफाओं में तपस्या करने, वही रहता है कीचड़ में, हिमालय की गुफाओं में नहीं जाता है, वही कीचड़ में रहकर ही न्यारा रहता है। तो तुमको भी पुरानी दुनिया में रहते, तमोम प्रधान दुनिया में रहते, यहाँ के वातावरण के प्रभाव से न्यारे रहना है, जो न्यारे है वही बाप के अति प्रिय प्यारे है, अति प्रिय है, जो बाबा से प्यारे नहीं है। फिर दूसरा और एक उदाहरण दिया यहाँ पर, कौन सा, वाटर प्रूफ, माया प्रूफ, माया का असर तब होता है जब बाप से किनारा कर लेते हो, अगर बाप सदा साथ है तो माया का असर नहीं होगा। यहाँ और एक उदाहरण दिया, जैसे 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 कोई बहादुर अगर साथ में है तो निर्भय रहेंगे, तुम्हारा साथी है सर्वशक्तिमान, तो तुम्हें कितना निर्भय रहना चाहिए। तो न्यारा रहना, माया प्रूफ रहना, और उसके साथ का अनुभव करना, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों का अनुभव, ये था। और क्या चौथा, तीसरा, तीसरी पार्टी,
पार्टी समृद्धि,
नहीं डबल लाइट, सदा डबल लाइट रहते हो, डबल लाइट अर्थात कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, आत्मा में भी बोझ, बिंदी रूप आत्मा में बोझ नहीं, और फरिश्ता में भी बोझ नहीं, हल्की अवस्था, कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, निर्भार अवस्था, निर्बोझ अवस्था, ऐसी जो अवस्था है वो है डबल लाइट स्थिति। कर्मों का भी बोझ नहीं होता, कोई चिंता नहीं आगे की, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, हल्का,
कर्म करते टाइम फरिश्ता स्वरूप,
हाँ कर्म करते समय फरिश्ता, आत्मा में भी बोझ नहीं, फरिश्ते में तो बोझ है ही नहीं। सिर्फ आपने कहा जैसी स्थिति होती है वैसी, जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। और क्या कहा? हाँ नहीं, यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं है, वो तो बाद में है, यहाँ गृहस्थी वाला पॉइंट है। गृहस्थी और ट्रस्टी निमित्त भाव कर, करण करावन हार करा रहा है, ये स्मृति रहेंगी तो हल्के रहेंगे, ट्रस्टी रहेंगे तो सफलता ज्यादा बोझ कम और मेहनत कम। अगर जिम्मेवार बाप है, अगर गृहस्थी समझेंगे तो मेहनत ज्यादा है और सफलता कम, क्योंकि उसमें होता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे कर्म है, ये वाली बात है। लास्ट पार्टी वो मैं और मेरापन वरदान था उस दिन का, मेरे को मैं का जो अश्व है उसको अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा कर दो, वो देह मैं और मेरापन का त्याग सबसे सूक्ष्म त्याग है, जहाँ मैं और मेरापन समाप्त हो जाए वहाँ समानता और संपूर्णता आ जाएगी, अगर ये दो चले गए तो। पर ये सबसे सूक्ष्म त्याग है, मैं को समान में परिवर्तन कर दो और तेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, ये काम कर दो, छोटा सा काम है ये, इतना कर दो, छोटा सा काम है।
उतना टाइम लगेगा एक पेड़ के पत्ते जितना,
ज्यादा टाइम नहीं है, छोटा सा काम है, इतना कर दो तो बस हो गया, संपन्नता संपूर्णता आ जाएगी। तो मैं के अश्व को स्वाहा कर दो, मैं तो दिखता नहीं कहा है, छिपके बैठा हूँ, उसको से जासूस लगाने पड़ेंगे ढूंढने के लिए कहाँ है, पता नहीं कितने दुनिया की पुलिस लगी हुई है पर अभी तक मिला नहीं है वो। चलो लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पार्टी, रोई पहाड़, पहाड़ जो है समस्या है, परिस्थितियाँ कैसी रहेगी, कैसे लगेगा, रुई और राई, राई भी नहीं रुई, इतनी हल्की हो जाएगी, हल्का है कॉटन, रुई कॉटन ना, नहीं फिर क्या, राई रुई, हाँ वो छोटे छोटे होते हैं वही ना, ऐसे ऐसे हाँ फूटता है, हाँ फूटता है वो, बहुत ही हल्का होता है, बरबर कपास, कपास अर्थात कॉटन, रुई उससे भी हल्का
है,
छोटा सा
बीज होता है,
जो हम कह रहे हैं वो है कपास, कपास कॉटन, और वो जो बाबा जो कह रहे हैं वो रुई है। अच्छा चलो उसके डिटेल में नहीं जाना है, हल्का रहना है बस, ये इससे भारी नहीं हो जाओ कि वो कॉटन कपास है या रुई है, रुई को पकड़ के भारी नहीं हो जाओ। लास्ट श्रेष्ठ स्मृति, जैसी स्मृति रहेगी वैसी ही स्थिति रहेगी, तो कर्म और संकल्प में भी कौन सी स्मृति रहे, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने कहा चलते चलते मैं विशेष आत्मा की जगह मैं साधारण तो नहीं, साधारणता तो नहीं आ जाती, मैं विश्व में ब्राह्मण छोटी तिलक जो है वो सदा लगा हुआ अमिट और अविनाशी हो, कोई मिटा ना सके, ये स्मृति का तिलक, ब्राह्मण का भी तिलक हमेशा लगाते, कायम रहता है उनका तिलक, अलग अलग तिलक रहते हैं, वो हो गया ना, तो ये स्मृति का तिलक कभी मिटे ना। तो चारों पार्टियों से क्या कहा, सबसे पहले तो हर कदम में पदम है, मैं पद्म पदमपति हूँ, और एक समय आएगा जब आत्माओं की यहाँ भीड़ लगेगी। एक और एक पॉइंट रह गया संपर्क वाली, कभी कभी संपर्क नहीं, सदा संपर्क होना चाहिए तुम्हारा, सदा संपर्क, हाँ पार्टी बोले एक वही जगह बोला ना, सदा संपर्क होना चाहिए आत्मा, हाँ पहले इसमें सदा संपर्क रहना चाहिए, कभी कभी वाला संपर्क नहीं, अपने काम का है, जब हमारा प्रोग्राम रहे तो आ जाओ, उनके प्रोग्राम रहे तो हम नहीं जाएंगे, उनके घर में उसके बेटे की शादी है तो हम नहीं आएंगे क्योंकि हम तो खाते नहीं, और हमारे शिवरात्रि में आना ही है आपको तो आएंगे क्या,
हर वर्ग की सेवा कर बाबू ने,
हर वर्ग, ये भी एक पॉइंट है, हर वर्ग की, वहीं पे बोला है उसी के आगे का लाइन है, ये तब कहा है, कब की मूल्य है ये 79, उसके बाद में वर्गीकरण सब हुआ ना, तो देखो बाबा की सूक्ष्म प्रेरणा है, वहीं से चालू हो गई, कि हर वर्ग की सेवा करो, फिर वर्ग बने, फिर उनकी कॉन्फ्रेंसेस, फिर सारा विस्तार हुआ। कितना सूक्ष्म सारा है। हाँ वही ना, मतलब उसके पहले बाबा यहीं से इशारा देना चालू हो गए ना, हर वर्ग कोई भी उलाना ना दे, कोई भी उलाना ना दे तुमको कि हमको बताया नहीं। ज्ञानी तो अपना अर्थात विजयी, एक ये भी एक पॉइंट है एक जगह लास्ट में। और भी कोई रह गया है माता जी, कोई पॉइंट रह गया है तो बोलो। और भी रह गया एक या दो
पॉइंट बाबा ने सेवा में कहा ना कि अभी धरनी तैयार हो रही है।
हाँ,
सेवा की जो बाद में कहेंगे कि यहीं से सत्य,
यहीं से सत्य और कहीं नहीं है, बस इन्हीं हाँ, के पास सत्य है।
जो अभी बाबा ने आया तो इस बार बोला धरनी तैयार हो
गई, तो यही वो है ये ऐसा कहेंगे। और एक समय का भी इशारा दिया एक जगह आज कि इस समय में भी थोड़ा रहा, बहुत थोड़ा रहा हुआ है। पुरुषार्थ का समय तो चला गया, पुरुषार्थ की बात भी कही ना, थोड़ा थोड़े का भी थोड़ा रहा 79 में। हाँ, बचपन चंचल और अचल, और चंचल और अचल। अभी तुम्हारी बच्चे का उदाहरण दिया, बच्चा अभी वानप्रस्थी हो गया फिर भी चंचल था, इसको क्या कहें, अचल बनना है, अचल। बच्चा वो बोला कि वो कच्चा विद्यार्थी, वो पहला पार्ट ही कच्चा है अभी तक, और ये बच्चा कच्चा बच्चा। और जच्चा भी होता है, जच्चा पता है ना, जच्चा मतलब माँ, जच्चा बच्चा। हॉस्पिटल में बोर्ड दिखे नहीं, जच्चा बच्चा भी तो रखे माँ बेटे को, जच्चा बच्चे
माँ।
तो ये थी आज की मुरली। तो इसमें से समान निकालना, उसको पढ़ना, उसको बार बार पढ़ना, उसको धारण करना, उसको समझने का अभ्यास करना, उसकी गहराई में जाना, केवल सुनना नहीं, केवल उसके ऊपर जो चिंतन हुआ है उसको भी सुनना नहीं, केवल उसके अंदर घुसना, तो ही कुछ अनुभव होंगे। अमृत नहीं क्यों, रात में नहीं जाएगा, सोते समय सबसे बेस्ट विधि है कि जो मुरली चली ना सुबह उसको याद करते करते सोना। जो सो रहे ना हम, जब हम लटक रहे निद्रा और अनिद्रा के बीच में डोल रहे हैं, अभी नींद आई नहीं है, उस समय याद करने का प्रयत्न करना कि क्या क्या था
उसी समय, तो याद नहीं था
क्योंकि वो जो टाइम है ना, वहाँ पे आत्मा को सबसे ज्यादा आकर्षित वो करता है कि जो उसको बहुत प्रिय है। अभी दिन भर उसने जो कर्म किए, उसके बाद में जो आत्मा के अंदर का जो प्रिय है, चाहे वो देहभान है, विकार है, चाहे व्यर्थ है या कुछ और है, वही उस समय उसको याद करते करते सोने में आत्मा को अच्छा लगता है। उसके पहले भले वहां बैठ के योग कर लिया, परंतु लेटे हुए और जो सोने की अवस्था है, वो समय पे ज्ञान का चिंतन करते करते सोना, तो वो अंदर घुसेगा सबकॉन्शियस में तब तक नहीं तो वो कुछ कुछ याद आते रहता है। वो ही एक समय है कि ज्ञान का चिंतन करते 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 सो जाना और नींद लगती, तो वो आप ही अंदर चला जाता है। नहीं तो ये बैरियर इतना जबरदस्त है कि ये घुसता ही नहीं उधर कुछ, केवल स्वप्न के समय खुलता है वो, ऐसे खुलता है, फिर रात में इधर से बहुत सारा निकलता है, इधर आता है, और ऐसे विचित्र स्वप्न दिखते हैं कि समझ में आता है क्या है ये। कई पेशेंट ओपीडी में आते हैं हमारे भाई बहने, बहुत स्वप्न आते हैं, अभी इसके लिए क्या दवाई दी समझ में नहीं आता है मुझे तो, बहुत बार नहीं, ये वो लोग है जो दवाई नहीं ले रहे, कोई दवाई नहीं ले रहे, दवाई चाहिए अभी, क्योंकि ज्यादा स्वप्न आते, बहुत स्वप्न आते हैं, और ऐसे उत्पटन कि जिसका कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे भी स्वप्न आते हैं, क्या किया जाए।
नहीं, केवल दवाई लेने के बाद स्वप्न आते
हैं वो अलग बात है दवाई बंद कर दो यहाँ तो वो बात चालू है कि बहुत स्वप्न आते हैं, इसके लिए वो है विधि है कि केवल बाबा के सामने बैठ गए, योग कर लिए या कुछ किताब पढ़ लिया, वो नहीं, मन की स्थिति क्या है, मनोदशा क्या है, मन की अवस्था क्या है, मन में किस रीति से कौन से संकल्प चल रहे सोते समय, उन संकल्पों को श्रेष्ठ कर देना, महान कर देना, ऊंची स्थिति में स्थित हो जाना, तो नींद भी सत प्रधान हो जाएगी। चाहना है उसमें जो एकदम इंटेंस डिजायर है, ऐसा कोई संस्कार है जो उसमें पड़ा हुआ है, उसको देखा ही नहीं जा सकता। सबकॉन्शियस जो है ना, ये अंतर मन जो है सारा कुछ हमारे, वो अंतर मन में इतनी शक्ति है कि हम उस अंतर मन से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी कहा ना असंभव से संभव हो जाएगा। राई रोई जो बोला ना उसने ये बात भी कही है बाबा ने, असंभव से संभव हो जाएगा। इतनी शक्तियां हमारे ही मन में, अंतर मन में समाई हुई है। ये शक्तियां अनटैप्ड है, इसको हमने अभी तक पहचाने नहीं है, जाना ही नहीं है। अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु वो इच्छा और इंटेंस डिजायर उत्पन्न होनी चाहिए। इतनी शक्ति उसमें, सारी बीमारियां बिना किसी दवाइयों के केवल अंतर मन की शक्तियों से ठीक हो सकती है। विवेकानंद ने कहा एक जगह, the bite of the snake is poisonless if you can firmly deny it। अगर तुमको सांप ने काटा, पर अगर तुम अपने मन को आदेश दो या शरीर को आदेश दो मुझे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। इतनी शक्ति है मन में, पर वो इतना फिर फर्म फेथ चाहिए, इतना वो अंदर से विश्वास चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना, इतनी शक्ति है उसमें। सारी बीमारियां, ऐसे कई किताबें लिखी हुई है, कई ऑथर्स है जिनके ऐसी ऐसी बीमारियां थी कैंसर की, जो किसी ने, कोई डॉक्टर कुछ नहीं ठीक कर पाया, उन्होंने अपने मन की शक्ति से उसको ठीक कर दिया। ऐसी ऐसी बीमारियां, हमने भी कई सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनको हमने ही बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो अभी मुश्किल है पूरा कैंसर फैल गया है शरीर में, और अभी तो बचपन में मुश्किल, 6 महीने के बाद वो मिला। अरे डॉक्टर साहब पहचाना क्या मुझे? मैंने बोला हाँ बोलो, हाँ फिर याद है, अच्छा तुम? बोले मुझे मेरे राम ने बचा लिया, अभी क्या बोलू मन में इतनी शक्ति है। मतलब ये कोई इस बात के लिए नहीं कह रहे कि अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देना, पर मन में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। हमको अगर नींद नहीं हो रही है फिर भी उसके बाद में भी हम चला सकते हैं। अगर नहीं हुई कभी, 2 घंटे की भी नींद हुई, एक है कि आलस चल गया, वो अलग बात है। पर ऐसा नहीं कि ये हुआ तो हम ये नहीं कर सकते, फिर सब परिस्थिति में हम अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। इतनी शक्तियां है मन में, भक्ति में भी वही सब शक्तियां ही तो है। ये हाँ, विश्वास क्या होता है? विश्वास क्या होता है? वही तो विश्वास है। निश्चय क्या होता है? वही तो है। आज का वरदान स्लोगन भी तो है ना, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत। एक होता है अज्ञात, भविष्य अज्ञात है, पता नहीं वहां क्या होने वाला है। तो जो लोग यहाँ आ जाते हैं उनको थोड़ी चिंता होती है, बुढ़ापे में क्या होगा, घर होगा कि नहीं होगा, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, बीमारी में क्या होगा, खाना कैसे खाएंगे, कौन पका के देगा, ये सारी जो है ना ये परीक्षाएं है निश्चय की। एक और एक बात बोलिए बाबा ने, माया तो आएगी, अगर वो पेपर नहीं लेगी तो मायाजीत कैसे बनोगे? पास कैसे? पास एक ऑनर बनना है ना,
वरदान है माया,
तो ये तो मायाजीत का तुमको वरदान है। लेकिन तो अगर ये भी परीक्षा नहीं आएगी, ये सारी जो अभी बता रहे हम, तो फिर मायाजीत कैसे बनेंगे? मायाजीत कैसे बनेंगे? पास एक ऑनर का सर्टिफिकेट ऐसे दे देंगे कि बिना परीक्षा पास की? तो परीक्षा तो सारी है, वहां हमारे निश्चय का पेपर होगा, हमारा बाबा पर कितना निश्चय है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनको मतलब निश्चय डगमगा जाता है बीमारी में, बहुत बड़ी बीमारी अगर आ जाती है ना तो निश्चय डगमगा जाता है। फिर वहां फिर हमने क्या क्या सेवाएं की, हमने अपना जीवन किस तरह से बिताया है, ज्ञान और योगी बन के कि केवल सेवाई करते रहे? जो लोग केवल सेवाई करते रहे और ज्ञान योग में कम रुचि थी उनकी स्थिति हिल जाती है। फिर संकल्प आने लगते है कि मैंने अगर शादी की होती तो आज मेरी बीवी होती, मेरे बच्चे होते, मुझे पूछने वाला होता, ये सारे संकल्प चलते हैं। बहुत ही उदास, चिड़चिड़े, इरिटेट हो जाते हैं, हर चीज से इरिटेट, बड़े बड़े बहने और बड़े बड़े भाई सबकी ऐसा ऐसे हालत हो जाती है बीमारी में, क्योंकि वहां पर एकदम असहाय अनुभव करते हैं। उस परिस्थिति में वही स्थिर रह सकते हैं जिनके पास ज्ञान के चिंतन में जो रहे, जिनका योग शक्तिशाली रहा और सेवा भी करे, केवल सेवा 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 करते रहे और ज्ञान योग को छोड़ दिया है, उसमें शक्तिशाली नहीं बन सकती आत्मा, परिस्थितियों में गिर जाती है, हिल जाती है, डगमग। तो वो पेपर है एक वरदान आज का, गुणमूर्ति। बाबा ने कहा तीनों सब्जेक्ट को मार्क्स समान है, मनसा को भी, वाचा को भी और कर्मना को। तो मनसा को, मनसा की जो सेवा है उसमें भी मार्क्स है, और पर मनसा सेवा करने के लिए स्थिति भी उतनी शक्तिशाली चाहिए। हर एक मनसा सेवा नहीं कर सकता, मनसा सेवा के लिए बहुत ऊंची स्थिति चाहिए। मनसा सेवा के लिए हमारा 1 घंटे का योग भी विश्व के लिए फायदा हो रहा है, हमारे अमृत वेले से विश्व का कल्याण हो रहा है, हम अगर अमृत वेला विश करें तो विश्व को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसे भी हमारे अंदर संकल्प चलने चाहिए। अगर हम थोड़ा कम शक्तिशाली है तो विश्व को लॉस है, उससे हम उसको वंचित कर रहे हैं हमारे सकाश से विश्व को। तो तो वो शक्तिशाली होना चाहिए। तो क्या कहा उसने, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में तीनों सब्जेक्ट को समान मार्क से तो सफलता बनेगी। और क्या कहा, गुणमूर्त
सेवा
है, तो अपनी धारणाओं को धारणाएं और गुणों से तैयार करना। और क्या कहा, और भी कोई पॉइंट रह गए, हो गए शायद सारे।
जो वरदानी है वही माला माल,
जो वरदानी है वही माला माल है। और अनिल भाई कुछ तो सुनाओ,
संकल्प बोल और कर्म का बैलेंस,
संकल्प बोल और कर्म का बैलेंस हो। अपने अपने बंधनों की लिस्ट निकालना, मुझे कौन कौन से बंधन रोके हुए हैं उड़ने के लिए, कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे बांध के हैं। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है। रात में मतलब अपनी दिनचर्या को देखो कि ये टाइम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो योग युक्त नहीं होने देती, कौन कौन सी ऐसी बातें जो बुद्धि को भटकाती है, कौन कौन सी ऐसी बातें कि जिसमें मेरी भिखारीपन की अवस्था आ जाती है उस बात कि जिसमें मुझे मांगने पर मजबूर हो जाना पड़ता है बाबा से या व्यक्तियों से मनुष्य से। क्या बोला, ऐसा तो बहुत बोलते हैं हमारे घर में, अभी हमारा सेंटर नहीं बनने, हमारा सेंटर जमीन नहीं मिल रही है, आप सकाज दो। हमारा सेंटर अभी जमीन मिल गई, अभी जल्दी मकान बन जाए उसके लिए सकाज दो। अभी इधर से हमारी बेटी है सेंटर में है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, आप सकाज दो। सकाश की लेन देन, डीलिंग्स इन सकाश, डीलर्स इन सकाश, जिसको जो
ज्यादा बोलने लग जाए ब्राह्मण जो है आजकल ऐसे चलते चलते थोड़ा मेरे लिए
योग कर लेना
पड़ेंगे।
योग कर लेना ये कमजोरी की निशानी है, हर आत्मा में इतनी शक्ति है। तो अपने बंधनों की लिस्ट बनाना, कौन से टाइम पर टाइम
तो हर बंधन ये है कि बंधनों की लिस्ट बनाने का ही बंधन है,
वो भी एक बंधन। अच्छा चलो लिस्ट नहीं बनाओ, मन में सोचो खाली,
दिखाई देना चाहिए
मन में सोचो खाली क्या क्या कुछ है। अच्छा बंधन शब्द यूज नहीं करो, कुछ और बॉन्ड या कुछ दूसरा शब्द देखो, कौन कौन सी बाधा है,
रोकते हैं
कौन मुझे रोकते हैं, कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी चीज है जो मुझे आगे नहीं जाने दे रही है, किसने मेरे पर काटे हैं, कोई पीछे की कौन खींच रहा है मुझे पीछे। चलो अगर कोई ये जैसे इंटरनेट है, कई लोगों का ऐसा है कि रात में बैठते हैं 10 बजे और वो बज जाते हैं 11-12 और फिर उठ नहीं पाते, वो एक बंधन ही है ना। तो उसमें एक सिंपल सा संकल्प कि 6 बजे के बाद उसको हाथ नहीं लगाना या 8 बजे के बाद उसको हाथ नहीं लगाना, तो बहुत सारी बाधाएं रुक जाएगी। जैसे मोबाइल का भी है, इतने बजे के बाद किससे बात नहीं करनी है, रात को 9 बजे के बाद ज्यादा बात कहाँ करते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे कभी 11 बजे लंबा लंबा, तो उसमें बंधन में फंस जाती है आत्मा। केवल एक छोटा सा संकल्प कि 8 के बाद किसी से बात नहीं करनी है या 9 के बाद किसी से बातें नहीं करनी है, 8 बजे तक सुबह किसी से बात नहीं करनी है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी माया से बचा देगा आत्मा और शक्ति भर देगा उसमें।
पहले तो हमने सोचा था कि हम मोबाइल लेंगे नहीं कभी,
हाँ चाहे दुनिया कुछ
देख रहे हैं, 2-3 तो होने ही चाहिए।
नहीं वही वाली बात है, साधनों का बंधन ये भी है, पर साधन जरूरी है, उसको इस रीति से यूज करो कि वो हमारी सेवा का साधन बने, हमारी स्थिति को ऊपर उठा दे। वो उसके जैसा कोई साधन नहीं है, इतनी सारी चीजें पॉजिटिव अगर ले, अगर उसको निगेटिव रूप से ले, अगर उसका दुरुपयोग करे तो सारे दिन भर उसी में लगे रहना। ज्ञान, इसका उपयोग ज्ञान और योग के अतिरिक्त और किसी चीज के लिए नहीं करना है, ये याद रखना। इसका उपयोग ज्ञान और योग, हमारे जैसे हम बोल के लिए कह रहे हैं, हमारे बोल शक्तिशाली हो तो हमारे SMS और हमारे WhatsApp और हमारे ईमेल भी शक्तिशाली हो। हम क्या भेज रहे हैं किसको, वो ऐसे ही भेज रहे हैं व्यर्थ में, जिससे ना तो मेरी उन्नति है ना तो उनकी उन्नति है। हमारा हम अगर कुछ भेज रहे हैं किसी को, वही चीज भेजना है कि जिससे उस आत्मा का कल्याण हो, तो ही वो, नहीं तो वो व्यर्थ के खाते में जमा होगा सारा। चाहे वो SMS हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, तो केवल भेजना है करके भेजना, इससे भी कुछ फायदा नहीं। वही चीजें भेजो कि जो आपने पढ़ी है और आपने धारण की है, आपको समझ में आई है। नहीं तो कुछ कुछ बस फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड, क्लास आ रहा है फॉरवर्ड, अरे पढ़ा के तुमने सुना क्या? नहीं कुछ नहीं, बस आया और भेजा, आया और भेजा, आया और भेजा। ऐसा लगता है बाकी लोगों ने पढ़ना चाहिए, वो भी वो जो जिनके पास भेज रहे वो सोच रहे दूसरों ने पढ़ना चाहिए। वो बस एक के बाद वो उसको वो उसको वो उसको, सब एक दूसरों का कल्याण चाहते, खुद का कल्याण छोड़ गए। वो ऐसी कहानी वाली बात है। तो ये भी एक बंधन ही हो गया ना, उसमें बंध गई है क्योंकि उसमें समय जा रहा है हमारा। इसका उपयोग ज्ञान और योग उपयोग करना है तो पढ़ने के लिए, इसके चिंतन करने के लिए, सुनने के लिए, वो भी कुछ क्लास या बाबा के माँ के वाह माँ के दादियों के माँ बाप के, इस तरह। तो ये अगर करो तो इससे जैसा कोई साधन ही नहीं है, बेस्ट सबसे बेस्ट साधन है,
दोस्त
है, सबसे अच्छा दोस्त है। पर दुश्मन बन गया तो पूरा खत्म करके ही छोड़ेगा, पूरा खत्म कर देगा, सत्यानाश। इसके लिए माता जी आपके पास तो नहीं होगा ना?
उन्हें
माताओं का अच्छा है, माताओं को एक ही बटन आता है, हेलो दबाने का और हेलो बोलने का, बस बाकी कुछ नहीं। ये अच्छा है, ज्यादा उसमें नहीं है। नहीं तो आज के युग में सबसे बड़ी माया टीवी मोबाइल और इंटरनेट ही है। टीवी तो छोड़ो छोड़ो, इसमें टीवी अवेलेबल है, ये इसमें ही अवेलेबल है। और दूसरा इंटरनेट, इंटरनेट अर्थात इंटरनेट, अंतरजाल, इंटरनेट का हिंदी शब्द है अंतरजाल, वो जाल ही है एक, उसमें आत्मा बंध जाती है।
वेबसाइट इन्हें सब कुछ उल्टा बड़ा बंधन ही है, ये जो शब्द है ना सबके उल्टे अर्थ भी है।
हाँ तो इसमें दूसरे भी हैं, ये बंधन तो ऐसे बंधन है इसमें नहीं छूट सकते, उसमें वो एडिक्शन है, एडिक्शन लत है, वो आदत है। तो इसमें एक बार वो हो गए ना, उसमें से छूट पहले तो ये पता चले कि हम इसमें बंध गए, यही ये जागृति ये कि हम इसमें बंध चुके हैं, पहले तो ये आए, उसके बाद में छूटने का प्रयत्न। अभी वो इसको हम स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हम बन चुके हैं।
अच्छा लग रहा
है, अच्छा लगता है,
मजा आ रहा है। सेवा है ना, बहुत
सेवा। और उसमें हम हमारे जो ऐसे रॉयल्ड है ना, क्यों कर रहे हैं? सेवार्थ, सेवा के लिए जरूरी है। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, वही कहा हमारा जो व्यक्तित्व है वो खंडित है, दो एक दिखाने वाला जिसमें हम योगी होने का और ज्ञानी होने का और सेवा और सेवाधारी करने का स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, और अंदर में भोग विलास कामुकता ये सब कुछ आसक्तियां ये सब अंदर, पर हम ऊपर से ये सब एक मेंटेन करना चाहते हैं। तो हमारा स्प्लिट पर्सनैलिटी है, इधर और इधर अलग, इन दोनों को एक करना है। जो अंदर हमारे जो हम दिखा रहे हैं ना, फिर वही अंदर भी हो, ये ढोंग से बाहर निकालना है स्वयं को। किसको दिखा रहे हैं? किसको प्रभावित कर रहे? ब्राह्मण परिवार को? किसको किसको चीटिंग कर रहे? बाबा ने उस दिन कहा ना, ठगी यहाँ चल ना सके, जो याद में है वही दूसरों को याद, अगर वो नहीं करा दे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा,
थप्पड़ पड़ जाएगा,
थप्पड़ पड़ेगा। यहाँ ठगी चल ना सके, चीटिंग यहाँ चल ना सके, ये भी एक चीटिंग ही है। हम अपने कमरे में अकेले हैं तो हम कुछ और करना चाहते हैं, और सबके अगर दो तीन लोग हैं तो हम वहाँ पर ज्ञान योग का चर्चा करना चाहते हैं, और कोई नहीं है तो हम कुछ और करना चाहते हैं। अंतर में जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अपनी वासनाओं को पहचानना, अपनी वासनाओं को समझना, स्टडी करना उनकी, और उनसे उनको स्टडी करना और उनको देखते रहना ही उनसे मुक्त हो जाना है। ये जानना कि मैं इसमें बंधन में हूं, कोई दूसरा मेथड नहीं है मुक्त होने का, केवल ये जानना, ये समझ ही मुक्ति दिला देगी उससे। ये बंधन का कारण ये है, कारण को जानना ही मुक्ति का साधन है। और भी कोई पॉइंट है? बस ओम शांति।